क्या है, अन्य पिछली जो है
क्या स्वर्णिम युग,
स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण माने सोना, स्वर्णिम युग माने सोने का युग। कौन सा है? सतयुग। और स्वर्णिम संगम युग, क्योंकि संगम में दोनों ही है, स्वर्णिम भी है और लौह युग भी है, दोनों का मेल होता है। तो लौह युग के बाद फिर संगम, और संगम के तुरंत बाद संगम में स्वर्णिम युग भी है। निष्कष्ट और श्रेष्ठ दोनों का मेल है। पॉइंट तो वही पुराने पुराने ही आ रहे हैं, लेकिन रिवाइज इसलिए किए जा रहे हैं कि जो पुराने पॉइंट भी हैं उनको धारण नहीं किया जा रहा है। कितनी बार आया है कोई नवीनता करके दिखाओ। क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन अभी क्या करके दिखाओ? क्वालिटी बनाओ। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि प्रजा तो बहुत बनाई, अब क्या करना है और किसको प्रत्यक्ष करना है? हाँ, जो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, अब्बल नंबर राजा हैं, दोइम नंबर राजा हैं और थर्ड क्लास राजा हैं, उनको प्रत्यक्ष करो। अब्बल नंबर तो आठ ही है, द्वयम नंबर 24 की गिनती में है और बाकी 84 थर्ड क्लास राजाएं भी है जो दूसरे धर्मों से कनेक्टेड है। तो क्वालिटी निकालो, ये काम बेसिक वाले करेंगे, ये एडवांस वाले करेंगे। इनको पहचान होगी वही क्वालिटी निकालेंगे, और क्वालिटी को निकालेंगे और क्वालिटी को स्वीकार करेंगे और दूसरों से कराएंगे, मानेंगे और मनवाएंगे।
मोदी ने कहा है गुरु लोग वही शास्त्रों की बातें सुनाएंगे, यहाँ बाबा को कितने ज्ञान सुनाएंगे, ऐसा वादा किया, ऐसा वादा किया था।
तो फिर आज भी कुछ नया ज्ञान, ये नया ज्ञान नहीं है, जो वहाँ अव्यक्त वाणी चलाई गई वो क्वांटिटी और क्वालिटी का अर्थ क्या समझते हैं? पुराना अर्थ समझते हैं या नया अर्थ समझते हैं?
पुराना
तो पुरानी बात समझते हैं, और आपने क्या समझा, नया समझा या पुरानी बातें समझी?
नहीं,
क्वांटिटी और क्वालिटी का क्या अर्थ समझा? नया है, नई बात है या पुरानी बात है?
नई बात,
नई बात।
बाबा पाठी आत्माएं सेवा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी जो वाणी को प्रवेश करके सेवा करती
है।
तो फिर क्षेत्र में जिन्होंने बाप को प्रवेश किया उस समय तो ब्रह्मा बाबा तो राम बाप नहीं था, बाकी चैतन में जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया तो तभी तो राम बाप ने ब्रह्मा वाली सोच का कृष्ण शरीर
कृष्ण वाली आत्मा थी ना राम वाली,
और बाकी तीन भाई थे, उन तीन भाइयों में किरण को प्रवेश किया
माने ब्रह्मा की सोल, मम्मा बाबा की सोल 65 में और 68 में शरीर छोड़ने के बाद चुप होकर के बैठ गई।
कोई ना कोई में प्रवेश करके सेवा तो कर,
सेवा कर रही है ना, तो वही सेवा संचयतर से प्रत्यक्ष होने लगी। जो और तीन साथी थे उनमें भी उनका प्रवेश करके वही उन्हीं का कार्य चलता है। बाप दादा ही सेवा करते हैं, बच्चे सेवा नहीं करते हैं, वो सिर्फ हिम्मत करते हैं। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप दादा।
भगवान को तो कहते हैं सर्वव्यापी नहीं, वो तो एक व्यापी है, तो फिर ब्रह्म बाबा तीनों में प्रवेश एक साथ में हो।
भगवान के लिए नहीं बोला, बाप के लिए बोला। क्या भगवान माता पिता दोनों रूप में आता है, माता भी बनता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें व, लेकिन पिता का रूप भगवान का है और माता का रूप भगवान का रूप नहीं है। और न माता के रूप से सबके साथ संसर्ग संपर्क संबंध में आ सकता है माता का रूप, बाकी पिता का रूप संबंध में भी आ सकता है, संपर्क में भी आ सकता है, संसर्ग में भी आ सकता है। भगवान तो सबका है, माता का रूप प्रभावित होने वाला रूप है और बाप प्रभावित नहीं होता है। और
राउंड टेंटू का तभी तो देशों में आया ऐसा मुझे कोई है, तो फिर उनका तो हत्या की गए ना, कैसे लगेंगे टेंटू को उनका तो हत्या की गए ना।
अब पहले फेल हो गया या बाद में हत्या हुई?
पहले
खत्म हो गई
पहले।
हाँ ऐसा साबित नहीं कर सकते ना, पहले हत्या हुआ या पहले फेल
होने के बाद फेल कैसे होगा?
पहले
बात
अनिश्चय आवे तब फेल कहा जावे, या अनिश्चय आने से पहले ही फेल कहा जावे? कोई भी ईश्वरीय ज्ञान को ईश्वरीय यज्ञ को कब छोड़ता है?
अनिश्चय
आता है तो छोड़ता है, और अनिश्चय आता है अज्ञान के कारण। और कारण बता दिया मुरली में, शुरुआत में इतना ज्ञान
नहीं था
तो छोड़ के चले गए। एक होती है भक्त आत्मा और एक होती है ज्ञानी आत्मा। भक्त दिल के आधार पर चलते हैं कि बुद्धि के आधार पर चलते हैं?
नहीं, दिल के आधार,
दिल के आधार पर, भावना के आधार पर चलते हैं। तो उस समय जिनको साक्षात्कार हुए उनकी भावना तो पक्की बैठ गई, डटे रहे। और जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे उनको बुद्धि का भोजन चाहिए, और शुरुआत में बुद्धि का भोजन उतना
नहीं मिला
तो टूट पड़े। अगर पूरा षष्ठी चक्र का क्लेरिफिकेशन जैसा अभी मिल रहा है वैसा उस समय ही मिल गया होता तो वो कदापि अनिश्चय बुद्धि
नहीं बनते,
नहीं होते। और अनिश्चय बुद्धि तो सबको बनना ही है, कोई आगे बनते हैं और कोई पीछे बनते हैं। माया किसी को छोड़ दी नहीं है। ये राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में अनिश्चय में आई, बाद में शरीर छोड़ दिया। विरोधाभास कब पैदा होगा? निश्चय बुद्धि रहेंगे तब विरोध होगा, या अनिश्चय बुद्धि होंगे तब विरोध करेंगे?
अनिश्चय बुद्धि,
जब अनिश्चय पैदा होता है तब ही विरोध किया जाता है। तो पहले फेल हो गए और बाद में
शरीर
छोड़ दिया। अब कोई भी कारण हो शरीर छोड़ने का,
अलावा चांस देकर चांसलर बनो, चांस देकर चांसलर बनो,
चांस देकर चांसलर बनो,
समझी?
चांस देकर चांसलर बनो,
चांस
देकर
चांस देकर चांसलर बनो,
दूसरों को चांस दो,
चांसलर बनो,
चांसलर बनो।
ऐसा एक पॉइंट है,
ठीक है, इसका अर्थ ये है खुद इंचार्ज बन गए, खुद टीचर बन गए तो दूसरों को भी चांस दो कि दूसरे भी टीचर बने, दूसरे भी इंचार्ज बने, दूसरे भी बाप की गद्दी के समान बैठने लायक बने, तो दूसरों को चांस देंगे या हमेशा खुद ही आगे बने रहेंगे?
दूसरों को चांस
देने, एक होते हैं दूसरों को चांस देने वाले, दूसरों को आगे बढ़ाते हैं भले खुद पीछे रहें, एक होते हैं दूसरों को चांस ही नहीं लेने देते, आगे बढ़ते हैं तो टांग अड़ा देते, आगे दौड़ते हैं तो अड़ंगा लगा देते। तो चांस देना अच्छा है, जो दूसरों को चांस देते हैं उनको भगवान चांस देता है, ड्रामा चांस देता है।
बाबा ज्ञान में ऐसा
क्या
कौन सा पॉइंट जानना चाहिए?
ज्ञान में ऐसा कौन सा पॉइंट जानना चाहिए? बाप कौन सा पॉइंट जानना चाहिए?
कैसा? ऐसा माने कैसा? मतलब पास पॉइंट क्या जानना चाहिए?
पास पॉइंट तो बाप की पहचान है। किसी को कोर्स देते हैं, चाहे बेसिक कोर्स देते हैं या एडवांस कोर्स देते हैं, तो खास बात किस बात पर ध्यान दिया जाता है? बाप की पहचान। अगर बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है, बेसिकली नहीं बैठी है बेसिक वालों को, और एडवांस ज्ञान जो लेने आए हैं उनको एडवांस बाप का परिचय नहीं मिला है, तो उनको रवाना देकर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप को ही नहीं जाना, बाप को पहचाना नहीं, ये मुख्य पॉइंट पर ही पीछे हट गए, तो आगे उनको कुछ भी समझाने से कोई फायदा
नहीं,
नहीं। तो ये मुख्य पॉइंट है बाप की पहचान देना।
रावण का पत्नी मधुदरी, तो रावण उल्टा सीधा काम करते हुए भी, श्रीमंत का विरुद्ध करते हुए भी, उसको मटन लेकर के कुछ भी नहीं करे, रावण बैठ गया। अभी तो बाबा बोलते हैं राम ही रावण बनता है, फिर वेद में मंदोदरी कौन बनता है?
मंद उदर, उदर माने
पेट,
कौन सा पेट? हद का कि बेहद का?
बेहद,
बेहद। माना रावण के मुकाबले मंदोदरी का बुद्ध रूपी पेट मंद था या तेज था?
मंद
बुद्धि थी। तो कोई मंद बुद्धि भी, जैसे माताएं अक्सर करके बाप को पहचान लेती है और पुरुष लोग उतना नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन बुद्धि में तीखे होने के कारण पुरुष लोग जो है वो माताओं को क्या करते हैं? दबा लेते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ बात है, क्या माना? कन्याएं माताएं भले पहचान लेती हैं, उनका दिल गवाही देता है कि भगवान आ गया है, लेकिन याद की यात्रा में उतनी तीखी नहीं हो पाती, इसलिए पावर नहीं आती, पावर नहीं आती है तो मुकाबला नहीं कर पाती, फिर भी उनको सहयोग देने के लिए बांधी हुई है। नहीं तो सहयोग रावण को देना बंद कर देना चाहिए, जैसे विभीषण ने क्या किया,
रावण
मंदोदरी के मुकाबले विभीषण को मंद बुद्धि कहे या तीक्ष्ण बुद्धि कहे, क्या कहे? तीक्ष्ण बुद्धि था, परंतु वो पुरुष था और मंदोदरी स्त्री जाति की थी। कलयुग के अंत में जब ये रामायण की कथा चलती है, राम रावण युद्ध का टाइम चलता है, उस समय कन्याएं माताएं कमजोर हो जाती है समाज में या पावरफुल बन जाती है, कमजोर हो जाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इसलिए रावण को समझाते हुए भी रावण का मुकाबला नहीं कर सकी। कुमार का दादी कोई जो जब तक जीवित रही तब तक क्या किया है,
भाइयों का साथ,
अंदर से तो समझ लिया कि ये सच्चाई है। जो शास्त्र में भी लिखा हुआ है, रावण जानता था कि राम कौन है, भगवान कौन है, लेकिन फिर भी मुकाबला करता रहा। ये लोकलाज जो है वो छोड़ती नहीं है। जैसे गुरुओं के लिए कहा कि आज के गुरु लोग अगर सर्वव्यापी वाली बात को मान लें तो उनके फॉलोअर्स उनकी धुत्तड़े की कर देंगे। वो गुरु लोग अपना मान मर्तबा नहीं छोड़ना चाहते। तो ये भी एक अधीनता वाली बात है।
पावरफुल
की वाणी में पीयू की वाणी में जो ज्ञान था वो गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा था। वो भक्ति मार्ग की गीता को अर्थ सहित करके सुनाते थे। और ये जानने की बात है, मानने की बात है कि जिस गीता की और धर्म संप्रदायों के अनुसार 100 से भी ऊपर टीकाएं हो सकती है, जबकि वो सब धर्म संप्रदाय झूठे, तो ईश्वरीय ज्ञान जो सच्चा है उस सच्चे ज्ञान के अनुसार गीता का इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता क्या है?
हो सकता है।
यज्ञ के आदमी जो ज्ञान सुनाया जा रहा था संपूर्ण स्टेज में नहीं था, लेकिन जितना जो कुछ भी था वो सात्विक स्टेज में था। इसलिए बोला ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो आखिरी वाणियां चलाई गई उनमें ये बात स्पष्ट कर दी कि गीता को अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों?
मंथन नहीं होता ना,
क्योंकि मंथन ही नहीं हुआ।
उनके मंदिर में कब्रस्तान क्यों दिखाते
हैं?
कब्रस्तान है सर, उनके मंदिर में,
शिव के मंदिर के अंदर कब्रस्तान दिखाते हैं। एक और शिव का मंदिर है, मोस्टली कब्रस्तान में बनाया जाता है, शमशान में बनाया जाता है। उल्टा क्यों बोल रहे? शमशान जहाँ जहाँ होते हैं मोस्टली शहर से बाहर होते हैं, और जहाँ शहर से बाहरी हिस्सा होता है वहाँ शिव के मंदिर होते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिव को मुर्दा घाट पसंद है, इसके बीच में रहना है। बाप के साथ कौन रह सकेंगे? अथवा उल्टे अर्थों में कहें, बाप किनके साथ रह सकेगा? जो पूरे मुर्दे बने हुए होंगे उनके साथ बाप रहता है संपन्न स्टेज में। अगर बाप के साथ रहना है, बाप का साथी बनना है, तो क्या बनना है? मुर्दा बनना है। अब मुर्दों का स्थान कहाँ होता है? शमशान घाट में। तो शमशान घाट में वो शिव के संपूर्ण स्टेज के मंदिर बनाए जाते हैं।
हरे धर्म की आकृति ज्ञान सुनाया काली, उसको आधार से धर्म शास्त्र बन गया। ऐसे ही यहाँ भगवत गीता का आधार 3 साल का ज्ञान सुनाया से बन गया या 3 साल ज्ञान समझने के आधार से बन गया?
ज्ञान न सुनाने के सुनने के आधार से सच्चे धर्म की स्थापना होती है, न समझने और समझाने के आधार पर सच्चे धर्म की स्थापना होती है। जो भी ज्ञान है सुनने सुनाने समझने और समझाने के साथ साथ धारण करना और दूसरों को धारण कराना, तब सच्चे ज्ञान की और सच्चे युग की स्थापना हो सकती है। और ये ईश्वरीय ज्ञान तो प्रैक्टिकल है, सिर्फ सुनने सुनाने और समझने समझाने की चीज नहीं है, न इससे कोई बाप को प्रत्यक्ष कर सकता है। बाप का प्रत्यक्ष होगा
धारण करने से,
जब उसे ज्ञान के स्वयं धारणा स्वरूप बन करके दिखाए तो दूसरों के ऊपर असर भी पड़ेगा। माता जी का कोई प्रश्न है? नहीं है? किसका है? माताओं का नहीं है, पिताओं का है।
बाबा एक भाई का प्रश्न है, उनके घर में वो अकेला ज्ञान में चलता है, उनका युगल ज्ञान में नहीं चलता, तो फिर वो लोग जो भी विकर्म करते हैं इनके ऊपर बोझा पड़ता है सर।
कौन विकर्म करते हैं?
उनका युगल ज्ञान में नहीं चलती।
नहीं चलती?
उन अकेला ज्ञान में चलता है।
क्या
वो लोग अगर कोई विकर्म करते हैं इनके ऊपर?
अज्ञानी अज्ञान के कर्म करेगा उसका 1 गुना पाप चढ़ेगा, और ज्ञानी ज्ञानी ज्ञान होते हुए भी पाप भी कर सकता है और पुण्य भी कर सकता है। ज्ञान युक्त कर्म करता है तो 100 गुना उसको फल मिलेगा। अच्छा, और अगर ज्ञान होते हुए भी अज्ञान युक्त कर्म करता है माना पाप कर्म करता है तो 100 गुना पाप चढ़ेगा। इसमें दूसरे की किए हुए कर्म का ज्ञानी के ऊपर असर क्यों पड़ना चाहिए? हाँ, तब असर पड़ेगा कि खुद भगवान बाप को पहचान लेवे और घर वालों को संदेश न देवे, कम से कम समझाए नहीं सकता तो संदेश तो दे सकता है कि पूर्व जन्मों का सुकृत होगा जिसको संदेश दिया जाए तो ज्ञान को उठा लेगा। जो बाबा कहते हैं हमारे कुल का होगा तो थोड़ा भी सुना देंगे तो झट निकला भी। बाकी अगर संदेश ही नहीं दिया तो पत्नी का क्या दोष है? अगर
सारा विश्व की माता का पात्र एक व्यक्ति बजाय
एक
माता की बजाय सारे
विश्व का
सारा विश्व का माता का पात्र जगदम्बा बजाय।
हाँ जी,
फिर भारत माता का पात्र और एक माता जी बजाय और एक माता जी
एक और माता
और एक
भारत माता
और एक स्त्री भारत माता का पात्र बजाय।
वो भारत माता है, वो जगत की माता है। जगत माना सारा विश्व 500-700 करोड़, और भारत माता माना
सिर्फ भारत,
सिर्फ जो भारतवासी है ज्यादा से ज्यादा 33 करोड़।
सिर्फ सूर्यवंशी को भी और एक माता जी बजा रहे हैं? सिर्फ सूर्यवंशी माता को भी
माता का पाठ भी हर एक बजा
रहना। वो सिर्फ सूर्यवंशी की माता
बोले तो
उसमें चंद्रवंशी नहीं।
माता उनको तीन कैरेक्टर से सुनाया, फिर बाप की कैरेक्टर एक ही बजा रहे, जगत पिता, भारत माता, भारत पिता और सूर्यवंशी पिता, ऐसा कितने
बाबा। आए भारत में भगवान, आए विश्व में भगवान, ऐसे कहा जाता है क्या?
नहीं, नहीं कहा। भारत
विदेश में भगवान ये तो नहीं कहा जाता। हाँ, एक पिता के माताएं हो सकती है कई, लेकिन सारी दुनिया का बीज तो एक ही होगा। जैसे मुरली में बोला है, कहते हैं भारत में एक स्त्री गई तो एक जूती गई, दूसरी ले लेते हैं, तीसरी ले लेते हैं, चौथी ले लेते हैं। जैसी धरणी वैसी पैदाइश होती है। धरणी अगर अखंड है तो पैदाइश भी अखंड होगी। धरणी अगर खंडित है, विविचारणी है, तो पैदाइश भी विविचारणी होगी। और दुनिया में विविचारियों की संख्या ज्यादा है या विविचारियों की संख्या ज्यादा है? विविचारियों की। सब धर्म है, यहां तक कि जो देवता धर्म है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी संघ के रंग में आकर व्यभिचारी बन जाते। तो नाम रख दिया है शास्त्रों में दोनों प्रकार की माताओं का, एक का दिति और एक का
अदिति।
दिति से द्वैतवादी पैदा हुए और अदिति से अद्वैत देवताएं पैदा हुए। एक बाप दूसरा अनुकूल।
बाबा संगठन में बैठ के मुरली सुनते वक्त कोई और मुरली पॉइंट के ऊपर विचार सागर मंथन चल रहा है तो मुरली का डिसरिकॉर्ड होगा?
मुरली चल रही है, बाप की वाणी चल रही है, तो ध्यान से सुन लो, बाद में भले प्रश्नोत्तर करो, उसमें लेन देन करो, जिसको इंटरेस्ट होगा वो सुनेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो चला जाएगा।
संगठन में बैठ के सुनते हैं।
सुनना है संगठन में, किसकी वाणी सुनना है?
बाप की वाणी सुनना,
तो उसमें इंटरफियर थोड़ा ही करना चाहिए।
करने की बात है, सभी संगठन में बैठ के सुन रहे हैं टीवी के द्वारा, इसी वक्त अपने मन में कोई पॉइंट पर
नोट कर लो।
विचार
सागर मंथन चलता है तो नोटबुक है उसमें नोट करके रखो। कोई श्रद्धा विश्वास से टीचर की बात सुनना चाहता है, कोई उतनी श्रद्धा नहीं है, प्रश्नचित्त हो गया, प्रश्न कर रहा है, तो सबके अंदर तो प्रश्न पैदा नहीं हुआ, दूसरों क्यों डिस्टर्बेंस करना?
हाँ, वो बात नहीं है, अपने मन के अंदर ऐसा विचार सागर मंथन चल रहा है
तो क्लास पूरा होने दो मुरली का, और उसके बाद जो भी जिसको प्रश्न करना है वो टीचर से पूछे कि मुरली में ये बात आई है या क्लेरिफिकेशन में ये बात आई है, इसमें बाबा ने ऐसे बोला है, शास्त्रों में ऐसे बोला है, और हमारे हिसाब से अर्थ ऐसा निकल रहा है।
बुद्धि में ऐसा था विचार चलता है तो मुरली का डिस्ट्रिकॉर्ड होगा क्या?
बीच में क्यों बोलना चाहिए? हम तो जो क्लास में जाते हैं गीता पाठशाला में, वो किसकी वाणी सुनने जाते हैं?
बाप की वाणी।
बाप हमारा टीचर है, हम टीचर की वाणी सुनने जा रहे हैं, तो बीच में क्यों इंटरफियर करना चाहिए?
आपने इंटरफियरेंस की बात नहीं हुई है।
बाद में क्लास पूरा होने दो और बाद में बोलना चाहिए।
बोलने की बात भी नहीं है, आपने
बुद्धि में आया
तो चुपचाप वापस आ जाओ।
मुरली का डिस्रिकॉर्ड होगा क्या?
क्यों नहीं डिस्रिकॉर्ड होगा? वाणी चल रही है और वाणी में कोई इंटरफियरेंस करके बोलता रहे, एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, दस बार बोलेगा, वाणी को आगे सुनने ही नहीं देगा तो डिस्रिकॉर्ड नहीं होता है?
तो वही जानना चाह रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट बोला चाह रहा हूँ वो पॉइंट दूसरे कोई और पॉइंट,
वही एक पॉइंट को महीने भर चलाता रहे प्रश्न के ऊपर प्रश्नोत्तर करता रहे तो दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा, दूसरे तो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे वार्तालाप का क्लास होता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो वार्तालाप सुनते ही नहीं, बकवास ऐसे समझ के चले जाते हैं।
ऐसा क्यों कहना चाहिए जो
उन्हें दूसरे उन्हें जो बाबा ने बात बोली उसके ऊपर उनको श्रद्धा है, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, उनको ऐसी श्रद्धा है कि भगवान ने जो बोला भगवान आकर के जो सुनाता है वो सब सत्य सुनाता है और संपूर्ण सुनाता है, और हमें जरूरत होगी तो भगवान आगे चल के भी हमको सुनाएगा। भगवान बिना मांगे हमको देता है कि मांगने पर देता है, है? बिना मांगे देता है। और पहले हम कुछ जानते थे क्या?
जानते
पहले तो हम कुछ भी नहीं जानते थे, जब भगवान बाप ने आकर के हमको सच्चाई सुनाई तो हमने सत्य के बारे में आत्मा के बारे में परमात्मा के बारे में कुछ बातें बेसिक में जान ली, बेसिकली जान ली, फिर भी बुद्धू के बुद्धू बने रहे, फिर भी भगवान आकर के टीचर के रूप में टीच करता है, वो खुद ही हमको आकर के बताता है। तो ऐसे ही जब 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 जैसा टाइम होता है भगवान बाप हमको स्वतः ही बताते, इसलिए उनको तो ये श्रद्धा है कि भगवान हमको खुद ही सब पूर्ति करता है, हमको कुछ अकल जास्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना जरूर है कि भगवान बाप के द्वारा जो वाणियां बोली गई उन वाणियों पर हम निश्चय विश्वास पूर्वक आगे बढ़ते रहे, प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव लेते रहे। लेकिन अभी यहां तो एडवांस पार्टी में तो एक प्रकार के बीज तो है नहीं, एक धर्म के बीज है क्या?
नहीं,
यहाँ तो भांति भांति के छिलके चढ़े हुए, तो जिनके बुद्धि रूपी बर्तन में अनेक प्रकार के छिलके चढ़े हुए हैं, कोई का मोटा छिलका और कोई का पतला छिलका, कोई के बुद्धि रूपी आवरण ऐसा है इतना पतला है कि भगवान बाप ने सुनाया उन्होंने हृदयंगम कर लिया, खुद तो धारण किया दूसरों को धारण कराना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे हैं कि छिलका उतरता नहीं, तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है, जिसको प्रश्न पैदा होता हो वो अपने प्रश्न को क्लियर करे। शास्त्रों में भी ऐसा आया है, एक गुरु बैठ करके एक चेले को पढ़ाता है और उसके प्रश्नों का जिज्ञासाओं का समाधान भी देता है, लेकिन वो एक ही बात है। और यहाँ तो क्लास चलता है, एक ही बात नहीं है। हाँ, कोर्स जब दिया जाता है तो उसके लिए ये नियम बताया है कि एक बैठ करके एक को कोर्स दे, उसमें क्लास की बात नहीं है, उसमें डिसरिगार्ड की भी कोई बात नहीं है। कोर्स में प्रश्नोत्तर किए जा सकते हैं और इसके लिए तो रामायण में एक आख्यान आया है, शायद याद आ गया हो किसी को, नहीं याद आया है? याद नहीं आया? आ गया होगा
रामायण में क्या
है? अच्छा, वीर नारायण को याद आ गया होगा, नहीं याद आया? रावण को राम ने बाण मार मार करके सर काटना शुरू कर दिया, और जितने सर काटते थे उतने सर
पैदा हो गए,
पैदा हो जाते थे और ज्यादा पैदा होते जाते, सब लोग चक्रित हो गए, ये क्या, जितना काटते जाते हैं उतने सर
पैदा होते जाते।
महाकाली के लिए भी ऐसे ही दिखाते हैं, एक रक्तबीज से सैकड़ों असुर पैदा हो जाते हैं। तो विभीषण ने ये बात बताई, क्या ये रहस्य बताया किसके नाभि कुंड में
तीर मार
अमृत भरा हुआ है, उसमें अगर आपका बाण लग जाए तो ये खलास हो जाए। अब रहस्य क्या है, जो विनाश होने आए इस रावण संप्रदाय की दुनिया का, वो विनाश राम वाली आत्मा करती है, ज्यादा भयंकर काम करती है या कृष्ण वाली आत्मा करती है?
राम वाली आत्मा।
जो ब्राह्मण परिवार हुआ है बीके नॉलेज में, उसमें सबसे जास्ती सहन किसने किया? कृष्ण वाली आत्मा ने। और सबसे जास्ती सहन कराने के निमित्त कौन बने?
बच्चे।
बच्चे ढेर के ढेर और सहन करने वाला एक। और जिन्होंने ऐसा पाप कर्म किया उनके ऊपर हजार गुना बोझा चढ़ा, यहां तक कि ब्रह्मा ने अपना शरीर भी त्याग दिया और बच्चे के ऊपर उंगली नहीं उठाई, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया तो भी गुलजार दादी के द्वारा किसी के ऊपर उंगली
नहीं उठाई।
अब ये जो सौ गुना पापों का बोझ चढ़ा है बच्चों के ऊपर, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में इसका हिसाब किताब होगा या नहीं होगा?
होगा।
क्या सतयुग में होगा?
नहीं, संगम में।
कहाँ होगा?
संगम युग
में ही होना है। तो कृष्ण वाली आत्मा साकार में जब तक जीवित रही, सौम्य रूप धारण करके रही, जब संपन्न स्टेज पकड़ेगी तो वो धर्मराज का रूप बन जाती है, पापों का नाश करने के स्पेशल कार्य करती है, एक एक का सौ गुना गिनाएगी। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। संहार कारिणी कौन गाई हुई है?
शक्तियां
गाई हुई है। और शक्तियों में मुख्य माँ का पार्ट किसका है?
जगदम्बा
तो डब्बा है,
कृष्ण
उसमें भी माँ का पार्ट बजाने वाली असली आत्मा कौन है?
कृष्ण वाली आत्मा।
तो संसार का विनाश कराने के मुख्य निमित्त प्राय मुख्य रूप से कौन हुआ?
कृष्ण वाली आत्मा।
राम वाली आत्मा को तो फिर भी राम राज्य स्थापन करना है, वो तो बहुत छोटे रूप में स्थापन होता है, बाकी इतनी बड़ा पसारा फैला हुआ है ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, ये खलास कैसे होगा? किसके द्वारा होगा?
कृष्ण की आत्मा।
कौन आत्मा निमित्त बनती है?
कृष्ण वाली।
द्रोण माने घड़ा, घड़ा माने और आचार्य माने कलश को कहा गया है, ज्ञान कलश को कहा गया है घड़ा, और उस घड़े का आचार्य जो भी अनुष्ठान करते हैं भारतीय परंपरा में तो कलश स्थापन करते हैं, माना दुनिया में भगवान भी जब आया है तो उसने क्या किया? ज्ञान कलश दिया, ज्ञान कलश की स्थापना की और उस कलश को जिन्होंने धारण कर लिया बुद्धि में, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं धारण किया लेकिन बुद्धि में धारण कर लिया, उनको उस कलश का आचार्य कहा गया। वो द्रोणाचार्य हुए, ज्ञान कलश को धारण करने वाले आचार्य। पांडवों को और कौरवों को पढ़ाने के आचार्य, उनके खुद के जीवन में क्या लक्ष्य था? उनका लक्ष्य जीवन का ज्ञानयुक्त था या ज्ञान था? उन्होंने सहयोग कौरवों को दिया या पांडवों को दिया? कौरवों को सहयोग दिया। उनके लक्ष्य का जीवन का लक्ष्य ये रहा, बदल के नहीं दिखाएंगे, बदला लेके दिखाएंगे। तो ये ज्ञान हुआ या अज्ञान हुआ?
अज्ञान।
ये तो अज्ञान हो गया। इसलिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब देहधारी गुरुओं के नाम है। जो देहधारी गुरु लोग संसार का मान मर्तबा प्राप्त करते हैं लेकिन भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, धारण नहीं करते, जीवन में उतारते नहीं है, असत्य को सहयोग देते हैं, झूठ खंड की दुनिया को ही सहयोग देते हैं।
उन्होंने तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धर्मोत्तर
बना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी टीचर बनती हैं, कोई तो राजा कुमारी बनेंगी, कोई
प्रजाकुमारी
बनेगी, वहां भी जाकर के सतयुग में टीच करेंगे, राजा
नहीं,
राजा नहीं बनेंगे। तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया गया। ब्राह्मणों के जीवन का लक्ष्य क्या है? राजयोग सीखते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है?
राजा ही प्राप्त
करना। फिर टीचर ही बन करके रह गए, न खुद गृहस्थी बने, न दूसरों को गृहस्थी बनने की शिक्षा दी, न पवित्र प्रवृत्ति मार्ग धारण किया, न दूसरों को कराया। तो फायदा क्या हुआ?
महाभारत में दिखाते हैं द्रोणाचार्य ने एक लवि का उल्टा दक्षिणा का रूप में मान लिया, पर उन्होंने तो दीक्षा दिया ही नहीं, क्योंकि दक्षिणा ली है।
क्या
द्रोणाचार्य ने एक लवि को शिक्षा तो दिया ही नहीं, लेकिन उन्हें दक्षिणा उनके अंगूठे को मान लिया।
लेकिन एकलव्य की भावना क्या थी? उसने गुरु से शिक्षा ली, ये भावना थी या निगुरु था?
मूर्ति लगाकर
उसकी अंदर की भावना क्या थी?
गुरु से लिया,
शिक्षा ली, वो तो गुरु को मानता था, वो कोई नास्तिक थोड़े ही था, वो तो आस्तिक था, उसके अंदर से भावना रही हम गुरु से शिक्षा ले रहे। बिन गुरु होए के ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिनु, सच्चा ज्ञान वैराग के बिना प्राप्त नहीं होता। संसार से जब तक वैराग प्राप्त नहीं होगा, विरागी नहीं बनेगा, वैराग नहीं आएगा, तब तक हृदय के अंदर ज्ञान काम ही नहीं करेगा। इस दुनिया से वैराग होता है, दुनिया बेकार है, तो ईश्वर का ज्ञान कारगर है और ज्ञान ऐसे नहीं बिंदी से मिलता है या अंदर से कोई प्रेरणा आती है, ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं,
नहीं हो सकता। ज्ञान तभी मिलेगा जबकि क्या किया जाए, कोई साकार में गुरु को माना जाए। और एकलव्य की आत्मा थी कौन? वो एकलव्य जिसका नाम शास्त्रों के अनुसार काम के आधार पर नाम पड़ा, वो एकलव्य कौन सी आत्मा थी?
राम
वाली आत्मा थी। तो राम वाली आत्मा किसको अपना साकार में गुरु मानती है? शिव कोई साकार है?
शिव बाबा।
शिव बाबा कौन है? अरे राम की आत्मा के लिए शिव बाबा कौन है?
बाबा कहने से तेरे बुद्धि में बिंदी आती है ऐसा
क्या? वो तो आती है, वो तो याद करने की बात होगी, लेकिन ज्ञान कहाँ से आएगा? बिंदी से टपकेगा।
जब तक ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा में
तो ब्रह्मा साकार था या निराकार था?
साकार था। जब तक
जो ज्ञान सुनाया जाएगा वो मुख से सुनाया जाएगा कि हवा में से नीचे वो आ जाएगा?
मुख से ही सुनाया जाएगा।
तो मुख से, जिस मुख से ज्ञान सुनाया गया वो मुरलियों को मानता है या नहीं मानता है?
मानता है।
जब मुरलियों को मानता है तो साकार से ज्ञान हो गया।
अगर ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शून्य पाठ बजाय उसको शिव बाबा माना है तो वर्षा मानते नहीं मिलता, बाप से मिलता है, तो फिर उनका वर्षा कैसे मिलता?
वर्षा देने वाली आत्मा है न कि डब्बा है? वर्षा देने वाला कौन है? कौन सी आत्मा है? सुप्रीम सोल है या जिसमें प्रवेश किया वो है? ज्ञान तो साकार के बिना नहीं आएगा, बिन गुरु होए कि ज्ञान। ज्ञान जो है वो सदगुरु जला दलाल के रूप में चाहिए। तो दलाल के रूप में तो ब्रह्मा को मान लिया ना।
ऐसा भी कहा है ना, साकार बगैर मेरा कर कुछ नहीं।
हाँ, तो साकार अभी नहीं है क्या?
है। राम वाली व्यक्ति के बारे में।
हाँ, राम वाली आत्मा अभी साकार को याद नहीं करती है? साकार में निराकार को याद नहीं करती है क्या? ब्रह्मा के फोटो को याद करती है क्या?
नहीं। हाँ? उस समय की बात है।
उस समय राम की आत्मा थी मौजूद क्या?
नहीं। बाबा हिस्ट्री में लिखा है नेपोलियन जब पहली बार अफ्रीका पहुंचा तो फिर वहां के लोगों को गुलाम बनाकर सारा सोना लूट कर लेकर गया। तो फिर ये पॉइंट 76 में जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष करा उन तीनों में से कोई नहीं था।
जो कोई भी होगा और जिसने भी सच्चाई को प्राप्त किया होगा, सच्चाई अर्थात सोना, वो थोड़े समय तक संसार में वाहवाही ले सकता है, लेकिन सदा काल के लिए विश्व पिता बनकर के प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। क्या? सदा काल के लिए नहीं प्रत्यक्ष हो सकता। और नेपोलियन जो था वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड था या क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड था?
क्रिश्चियन
धर्म से कनेक्टेड था, तो समझा जा सकता है।
डॉक्टर
है क्या बोला गया?
उनका चरण छूते ही सारी बीमारी आती भाग जाते हैं। अरे तो कुछ भी प्राप्त हो
तो वो एक मुर्दे की बात की गई है, जो मुर्दा जो है वो मसालों में सुरक्षित करके रखा गया है क्रिश्चियंस में, उसके पांव स्पर्श लोग करते हैं ढेरों के ढोर लोग जो आते हैं ये भावना लेकर के इसको स्पर्श करने से हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कोई दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर है वो मुर्दा, कोई की बीमारी ठीक हो जाती है कोई की बीमारी ठीक नहीं होती। एक भावना की बात बताई, विश्वासम फलदायकम,
एक होली पॉइंट है निचे बुद्धि वर्ष को पाती है, निचे बुद्धि है लेकिन ज्ञान उठाते नहीं क्योंकि वो दास दासी के रिश्ते में आए, ऐसा पॉइंट है।
निचे बुद्धि है ज्ञान उठाया नहीं, तो जब फाइनल पेपर्स होंगे तो ज्ञानी डटे रहेंगे या ज्ञानी डटे रहेंगे?
ज्ञानी डटे रहेंगे।
भगवान किसको प्यार करता है?
ज्ञानी
को। नहीं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, क्योंकि जो फाइनल पेपर होंगे उसमें जो जितना जास्ती ज्ञानी होगा वो उतना ही जास्ती टीका रहेगा, अज्ञानी होंगे डसर हो जाएगा, बाप के ऊपर से निश्चय ही उनका उखड़ जाएगा।
माना एक
बाप दूसरा ना कोई ना बिल्कुल, तभी
ज्ञान उठाने की
अच्छा बाप की पहचान के लिए ज्ञान उठाने की दरकार ही नहीं,
उठाए तभी तो निश्चय बनाना उनके,
तो कह रहे हो ज्ञान उठाता नहीं, ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं।
मुरली का पॉइंट है,
हाँ मुरली का ही पॉइंट बता रहे हैं कि जो ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं है वो अज्ञानी की दृष्टि में है या ज्ञानी की दृष्टि में है?
अज्ञानी।
तो अज्ञानी हुआ, उसकी भी परीक्षा होती है कहां तक ज्ञानी है कहां तक निश्चय बुद्धि है। किसी ने सुना दिया बाप आया हुआ है, ज्ञान नहीं सुना निश्चय कर लिया हाँ बाप आया, फिर जब परीक्षाएं हुई तो डसर हो गए। ऐसे कलकत्ते में तो कितना क्लियर हो गया, ढेर के ढेर कलकत्ता विश्वविद्यालय में आने जाने वाले 500 स्टूडेंट्स हो गए 2000 में जब मेला हुआ एडवांस वालों का, और वो 500-700 स्टूडेंट्स जब परीक्षा हुई रविंद्र भाई को जेल में डाला गया तो सारे ही उखड़ के भाग गए। कन्याए वहां सरेंडर थी, उनको भी ले जाके ले लेकर के जाने लगे, आना ही बंद कर दिया। ज्ञान की परीक्षा कब होती है? ऐसी कोई परिस्थिति आए, ऐसा कोई वातावरण बने, तब ज्ञान की परीक्षा होती है।
बाबा एक होली पॉइंट है, भले बहुत सुनते हैं लेकिन बुद्धि में धारण नहीं होता, तो फिर वो लोग आगे चल करके पाई पैसे के राजदर्शी बनते हैं, मतलब पाई पैसा और राजदर्शी, अगर स्वर्ग में भी राजदर्शी है तो उनको स्वर्ग कैसे कम हो रहा है?
पाई पैसे के दास दासी का मतलब है कोई दास दासी बहुत पैसे लेता है, राष्ट्रपति का जो ड्राइवर होगा और कोई छोटे ऑफिसर का ड्राइवर होगा, हैं तो दोनों सरकारी मुलाजिमात दोनों ही ड्राइवर, लेकिन ज्यादा तनख्वाह किसको मिलेगी?
राष्ट्रपति के ड्राइवर
को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, तो वो पाई पैसे का कहा जाएगा कि हजारों रुपए का डॉक्टर ड्राइवर कहा जाएगा? हजारों हजार रुपए उसे मिलते होंगे, लायका तो होगी तब तो है इतना बड़ा ड्राइवर, तो पाई पैसे का नहीं कहेंगे उसे, पाई पैसे का पद पाने वाले उनको कहेंगे। तो 16000 की लिस्ट में तो आते हैं राज परिवार के भांति तो बनते हैं, प्रिंस प्रिंसेस तो बनते हैं, लेकिन 21वें जन्म में जाकर के कविता के अंतिम जन्म में ताज पतलून मिल जाता है, थर्ड क्लास दास दासी बन पड़ते हैं। इससे पहले के जीवन में क्या बोलो क्या बात है, वो माताएं कहती पिताओं के सवाल, पिताएं कहते माताओं के सवाल।
किसका है
वो सवाल, समझ में नहीं आएगा तो कौन कौन बोलेगा,
किसका प्रश्न है, प्रश्न किसका है, वो माता नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई वो माता।
बाबा एक छोटी पॉइंट है, आगे हम कभी यहाँ आकर के रहेंगे, जो योगी तो होंगे वही विनाश को देखेंगे,
वही विनाश को देखेंगे। टेलीविजन देखा जाएगा वो इन्हीं आंखों से देखा जाएगा, या अमेरिका में विनाश होगा वो इन आंखों से देखा जाएगा, टेलीविजन में, अमेरिका में भी विनाश हो रहा होगा, अफ्रीका में भी हो रहा होगा, यूरोप में हो रहा होगा, तो टेलीविजन में तो दिखाई पड़ेगा ना, यहाँ बैठे बैठे देखते रहेंगे,
पहले सूक्ष्म में,
सूक्ष्म स्टेज जिनकी बनी होगी उनको टेलीविजन की जरूरत नहीं है, वो तो आत्मा इस पावर को प्राप्त कर सकेंगे कि अपने शरीर को अलग देखें और आत्मा उनकी अलग, चाहे तो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके भी पार्ट बजा सकती है, दूर देश में रहने वाले भी, रहने वाले ब्राह्मण में भी प्रवेश करके पार्ट बजा सकती है। हाँ जी,
गांव में साई मंदिर है ना, भव्य मंदिर है, वो जैसा कृष्ण भव्य मंदिर कब से हो
है,
कृष्ण का भव्य मंदिर गांव में कब से हो रही
है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर साई बाबा जो भक्ति मार्ग में चल रहा है, साई का अर्थ होता है स्वामी, क्या स्वामी, स्वामी माना मालिक, किसका मालिक, गांव गांव शहर शहर का मालिक नहीं, बड़े से बड़ा मालिक कौन है, शिव बाबा नहीं, विश्व का मालिक, शिव बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता, तो बेताज बादशाह बनता है, ऐसा बेताज बादशाह बनता है और बनाता है जिसको ताज धारण करने की भी दरकार नहीं, फिर भी सारी दुनिया परम नाम जाने से पहले उसको मस्तक झुका के जाती है, सारी दुनिया के लोग चाहे नास्तिक से नास्तिक भी क्यों न हो वो भी उसे अपना मालिक समझते हैं। बाकी लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग के मालिक होंगे, नई दुनिया के मालिक होंगे, विश्व पिता एक ही है, उसको कहते हैं जगत पिता, जगत जननी,
पूछो आप कुछ पूछते हैं, कुछ सब
बता दीजिए।